लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार वित्त प्रभारी सरकारों के साथ मिलकर वित्तीय क्षेत्र को उचित ढंग से विनियमित कर नागरिकों को इसके खतरों से बचाए रखें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा याचना के गीत निहित हैं। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें तथा सभी बाधाओं और अड़चनों को जीवन से दूर रखें। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, आकाश में प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के सब दूतों प्रभु की स्तुति करो, समस्त विश्व मंडल प्रभु की स्तुति करो, सूर्य और चंद्रमा प्रभु की स्तुति करो, जगमगाते तारा मंडल प्रभु की स्तुति करो, सर्वोच्च आकाश प्रभु की स्तुति करो, आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 148वें भजन के प्रथम चार पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 148वां भजन भी प्रभु की स्तुति का गीत है। यह भजन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि प्रभु ईश्वर केवल सृजनहार ही नहीं अपितु त्राणकर्ता और उद्धारकर्ता भी हैं। वे केवल मनुष्यों के ही नहीं अपितु सारी सृष्टि और उसमें विचरने वाले सभी प्राणियों की देखरेख करते हैं। इसीलिए समस्त मानव जाति और संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभु की स्तुति करे। 148वें भजन का रचयिता ईश्वर को पा लेने पर उनकी स्तुति में लग जाता है। ईश्वर के प्रेम का एहसास पा लेने के बाद वह ईश्वर से वार्तालाप करता है। ईश्वर के प्रेम पर उसे भरोसा है क्योंकि ईश्वर की सृष्टि की देखरेख में वह भी सहयोग करता है। इस प्रकार श्रोताओ, 148वें भजन में सारा ब्रह्मांड मिलकर महिमामय स्तुतिगान में ईश प्रेम का प्रत्युत्तर देता है। यह भजन स्वर्ग से और फिर आकाश में प्रभु की स्तुति से शुरू होता है, यानी आकाश में विराजमान सूर्य, चंद्रमा और तारागण सभी मिलकर प्रभु की उदारता और उनकी कृपा के लिए उनकी स्तुति करें। इस स्थल पर श्रोताओं का ध्यान हमने इस ओर आकर्षित कराया था कि हिब्रू जाति के लोगों के लिए आकाश और तारागण केवल कोई भौतिक या वैज्ञानिक तत्व ही नहीं थे, बल्कि वे स्वर्गिक तत्व भी थे जिन पर केवल सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता पिता ईश्वर विराजमान रहा करते हैं। फिर 148वें भजन का रचयिता प्रभु की स्तुति का कारण बताता है, कहता है वे प्रभु के नाम की स्तुति करे क्योंकि उसके आदेश देते ही उनकी सृष्टि हुई, उसने उन्हें सदा सर्वदा के लिए स्थापित किया, उसके ठहराए नियम अपरिवर्तनीय हैं।
प्रभु स्वामी तेरी दया का अंत।
श्रोताओ, 148वें भजन के छठवें पद में भजनकार कहता है, उसके ठहराए नियम अपरिवर्तनीय हैं। वह इस तथ्य की पुनरावृत्ति करता है कि प्रभु ईश्वर ने जो नियम सृष्टि के आरंभ से कायम किए हैं वे कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे, क्योंकि उनका आधार है सत्य, शुभ और सुंदर। सृष्टि में जो कुछ सच है, सुंदर है और जो कुछ शुभ है, सब कुछ की सृष्टि ईश्वर द्वारा की गई है। ईश्वर ही उसे बनाए रखते हैं, इसीलिए ईश्वर द्वारा आदेशित नियम अपरिवर्तनीय हैं। वस्तुतः सृष्टि के सत्य और उसके सौंदर्य में ही ईश्वर की प्रकाशना हुई है। इसीलिए ऊपर स्वर्ग में और नीचे धरती पर जो कुछ है वह सब प्रभु के नियमों का पालन करे, क्योंकि उन्हीं के आदेश पर उनकी रचना संभव हुई। आकाश, पाताल, सृष्टि की समस्त शक्तियां, सृष्टि में व्याप्त कोलाहल, अस्त व्यस्तता, व्यवस्था और अव्यवस्था भी उन्हीं से और उन्हीं के आदेश द्वारा उत्पन्न हुई। उन सबको ईश्वर ने अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए स्वतंत्र जीवन यापन का वरदान दिया। सीमाएं भी प्रभु ईश्वर द्वारा ही निर्धारित की गई हैं। इसलिए संपूर्ण विश्व, मानव और उसमें निवास करने वाले सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें, उन्हीं के गुण गाएं। आगे 148वें भजन के 7 से लेकर 13 तक के पदों में भजनकार कहता है, मगरमच्छों और समस्त गहराइयों, पृथ्वी पर प्रभु की स्तुति करो। आग और ओले, बर्फ और कोहरे, प्रभु की आज्ञाएं मानने वाली आंधियों, पर्वतों और सब पहाड़ियों, फलदार वृक्षों और देवदारों, बनेले और पालतू पशुओं, रेंगने वाले सर्पों और उड़ने वाले पक्षियों, पृथ्वी के राजाओं और समस्त राष्ट्रों, पृथ्वी के क्षत्रपों और सभी शासकों, नव युवकों और नव युवतियों, वृद्धों और बालकों, प्रभु की स्तुति करो। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि प्रभु महान है, उसकी महिमा आकाश और पृथ्वी से परे है। श्रोताओ, इन पदों में सभी सृजित प्राणियों और समस्त सृष्टि से आग्रह है कि वे प्रभु की स्तुति करें। विविध प्राणियों की रचना की बात हमने उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय के 20 से लेकर 25 तक के पदों में की थी। जिन जिन पशु पक्षी तथा पानी में और पृथ्वी पर विचरने वाले सभी पक्षियों, जीव जंतुओं, रेंगने वाले जानवरों और घरेलू पशु पक्षियों का हमने जिक्र सुना, उन समस्त प्राणियों से आग्रह है कि वे अपने सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर की स्तुति करें। प्रकृति और उसका कण कण तथा प्रकाश की किरणों पर जीने वाला इंसान इस भ्रम में पड़ जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड पर उसका राज्य चलता है। इसी प्रकार मनुष्य अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों, अपने अनुसंधानों और खोजों के कारण तथा उसमें व्याप्त विवेक और प्रज्ञा के कारण स्वतः को सब कुछ मान बैठता है। वह इस भ्रम में पड़ जाता है कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर उसी का राज है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि केवल प्रभु ईश्वर सर्वोपरि हैं। प्रभु ही सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान पिता हैं। मनुष्य उन्हीं की स्तुति करे, उन्हीं के गुण गाए तथा अपने जीवन को साकार करे। अंत में 148वें भजन के अंतिम दो पदों में भजनकार कहता है, उसने अपनी प्रजा को बल प्रदान किया है, उसके सभी भक्त, इसराइल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा सबके सब प्रभु की स्तुति करें। आलेलुया। यहाँ भजनकार प्रभु के सेवकों को स्मरण दिलाता है कि हालांकि प्रकृति की शक्ति महान है तथा मनुष्यों को प्रभु ने उससे भी बढ़कर बल प्रदान किया है, यानी कि मनुष्यों को प्रभु ने विवेक, प्रज्ञा और बुद्धि संपन्न बनाया है, जिसका सदुपयोग कर वे अपने जीवन को सुगम और सुखद बनाएं तथा अपने सृजनहार की अनवरत स्तुति किया करें।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। नाजी मौत शिविर से बची बेलारूस मूल की नीडिया मैक्सिमोविच ने बुधवार को आम दर्शन समारोह के दौरान संत पापा फ्रांसिस को अपने हाथ में लगे टट्टू के नंबर दिखाए और संत पापा को स्मृति, आशा एवं प्रार्थना के चिन्ह स्वरूप 3 उपहार भेंट किए। लीडिया बेलारूस मूल की एक पोलिश महिला है जो नाजी नजरबंद शिविर से बच गई थी। उन्होंने बुधवार 26 मई को आम दर्शन समारोह के दौरान संत पापा को अपना हाथ खोलकर दिखाया, जहां ऑस्विट्ज़ के पूर्व कैदी के रूप में टट्टू से नंबर लगा हुआ है। संत पापा क्षण भर के लिए उन्हें देखते रहे, उसके बाद झुके और नंबर को चूम लिया। यही वह नंबर है जिसने 76 वर्षों तक हर दिन उन्हें उस डरावनी अनुभूति की याद दिलाई। जब 2016 में संत पापा फ्रांसिस ने शिविर का दौरा किया था, उनके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ एक सहज स्नेही भाव थे। लीडिया ने वैटिकन न्यूज को बतलाया कि इसी भाव ने मुझे मजबूत किया और मैंने दुनिया के साथ मेल मिलाप किया। लीडिया ने कहा, संत पापा के साथ हमने नजरों से एक दूसरे को समझा। हमें एक दूसरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। क्राको में रहने वाले लीडिया यूरोप में होलोकॉस्ट से बचने वाली एकमात्र व्यक्ति रह गई हैं, और इस समय वे युवाओं के बीच अपनी कहानी बांटने के लिए कस्टेल्ला मोंते के लिविंग मेमोरी एसोसिएशन के अतिथि के रूप में इटली का दौरा कर रही हैं। अपने जीवन पर उनके साक्ष्य को एक डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड किया गया है जिसका शीर्षक है लबम्बीना के नॉन सपेबा ओदियारे। लीडिया ने इटली में अपनी यात्रा का लाभ उठाना चाहा जिसको महामारी के कारण कई बार स्थगित किया जा चुका था। वे रोम आना और पोप से मुलाकात करना चाहती थी, जिन्हें वे बेहद प्यार करती हैं। उन्होंने कहा, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के बाद मैं संत पापा फ्रांसिस को प्यार करती हूँ। मैं टेलीविजन पर उनके समारोहों को देखती हूँ, हर दिन उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं उनके प्रति विश्वस्त और स्नेही हूँ। बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही इस प्रतिष्ठित बुजुर्ग महिला के लिए यह मुलाकात एक विशेष दिन में हुई। पोलैंड में बुधवार एक माता दिवस है। उन्होंने कहा, मेरे लिए यह एक खास अवसर है क्योंकि मेरी 2 माताएं हैं, एक जिसने मुझे जन्म दिया और जब मैं 3 साल की थी तभी नजरबंद शिविर ने उन्हें मुझसे छीन लिया था, और दूसरी पोलिश माँ जिसने मुझे गोद लिया जब मैं मुक्त हो गई थी और उसी ने मुझे बचा लिया। मुलाकात के दौरान लीडिया पोप से अपनी कहानी साझा नहीं कर पाई, किंतु उन्हें 3 उपहार भेंट किए, स्मृति, आशा और प्रार्थना, जो प्रतीकात्मक हैं, जिन्हें वे अपने जीवन के कोने का पत्थर मानती हैं। लीडिया ने ईश्वर पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा, यद्यपि बुराई ने उन पर वार किया जब वे सिर्फ 3 साल की थीं। वे 1941 में अपनी माता और दादी के साथ अपने घर को छोड़ निर्वासित की गईं। वे बतलाती हैं, मैं छोटी थी, मेरा कुछ ही साल हुआ था, किंतु मैंने पूर्व सोवियत संघ में युद्ध के दृश्यों को देखकर बहुत कुछ अनुभव कर लिया था। मैं एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिए गए दुख को सहने के लिए तैयार थी, किंतु ऑस्विच में मैंने जो अनुभव किया उसकी उम्मीद कभी नहीं की थी। आज लीडिया कहती हैं कि वे थक चुकी हैं, किंतु अपनी पूरी शक्ति से जीवन से चिपकी हैं, क्योंकि उन्हें एक मिशन को पूरा करना है, नई पीढ़ियों के लिए होलोकॉस्ट की भयावह स्मृति को जीवित रखना है, जो एक ऐसे युग में बढ़ रहे हैं जब नक्सलवाद और राष्ट्रवाद के भूत फिर से पनपते दिख रहे हैं। वैटिकन न्यूज एवं वैटिकन रेडियो के माध्यम से लीडिया ने आज के युवाओं से अपील करते हुए कहा, आपके युवा हाथों में दुनिया का भविष्य है, मेरे शब्दों को सुनिए, ऑस्विच और बिर्केनाउ जाइए और देखिए ऐसा जुल्म फिर कभी ना हो, उस इतिहास को फिर कभी ना दोहराया जाए। संत पापा फ्रांसिस ने पौत्रात्मा के कार्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। पौत्रात्मा हमें वर्तमान में जीने, एकजुट रहने और ईश्वर को प्रथम स्थान देने का परामर्श देता है। संत पापा ने 27 मई के ट्वीट संदेश में लिखा, पौत्रात्मा का पहला परामर्श है वर्तमान में जीना। हमारे लिए अभी के सिवा कोई उत्तम समय नहीं है, यहाँ और अभी ही भला काम करने का समय है, हमारे जीवन को उपहार बनाने का। आइए हम वर्तमान में जिएं। दूसरा, पौत्रात्मा हमें बतलाते हैं एक साथ होना। पौत्रात्मा हमें एकता के लिए प्रेरित करते हैं, विविधता में सामंजस्य लाने के लिए। वे हमें आपस में एक ही शरीर के अंग, भाई और बहन के रूप में पहचानना चाहते हैं। आइए हम एक साथ होने की कोशिश करें। तीसरी सलाह है, ईश्वर को अपने आप से पहले रखना। अपने आप को खाली करने के द्वारा ही हम प्रभु का स्थान दे सकते हैं। अपने आप को देने के द्वारा केवल हम खुद को पा सकते हैं। दीनता की भावना अपनाकर ही हम पवित्र आत्मा में धनी बन सकते हैं। आइए हम ईश्वर को पहला स्थान दें। 31 मई को संत पापा फ्रांसिस वैटिकन उद्यान स्थित मरियम ग्रोटो में रोजरी माला विनती के द्वारा महामारी के लिए प्रार्थना के आह्वान का समापन करेंगे। वैटिकन के संत पेत्रुस महागिरजाघर में सहायता की माता मरियम के सामने प्रार्थना करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने 1 मई को शाम 6:45 बजे प्रार्थना के मैराथन की शुरुआत की थी। उसके बाद विश्व के विभिन्न स्थलों में इस प्रार्थना को आगे बढ़ाया गया। पहल का आयोजन संत पापा फ्रांसिस की इच्छा पर वैटिकन की नवीन सुसमाचार प्रचार विभाग द्वारा किया गया है। इस प्रार्थना में विश्व भर के बहुत सारे विश्वासियों ने उत्साह के साथ विभिन्न तीर्थस्थलों, पलियों और संगठनों में अपने धर्मदर्शों के साथ भाग लिया। पहल अपनी सरलता के साथ कलीसिया से संत पापा फ्रांसिस के गहरे संबंध को दर्शाता है। संचार माध्यमों का प्रयोग करते हुए हर दिन हर संस्कृति एवं देश के लाखों लोगों को एक साथ प्रार्थना करने का अवसर मिला। भिन्न भिन्न संस्कृतियों ने प्रार्थना में रंग भर दिया, जो विश्व के ख्रिस्त समुदाय में विश्वास की एकता को दर्शाता है। 31 मई को पौत्र रोजे की शुरुआत एक प्रोसेशन के साथ की जाएगी। वैटिकन में इस रोजे के साथ कई अन्य तीर्थस्थलों में रोजरी करते हुए विश्वासी ऑनलाइन भाग लेंगे। उधर ब्राजील में 30 मई को बच्चों और किशोरों के लिए नवा राष्ट्रीय मिशनरी दिवस मनाया जाएगा। इस दिन बच्चे और किशोर काम के लिए अपने समर्पण को नवीकृत करते हैं। यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्षों ने भली इच्छा रखने वाले सभी महिलाओं और पुरुषों को निमंत्रण दिया है कि वे लाउदातो सी चिंतन दिवस में भाग लें, जिसमें हमारे आम घर के बेहतर देखभाल के लिए योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।